अधिराज जी के इमरजेंसी अलार्म बजाते हैं, सीधा अस्पताल में हड़कंप मच गया। अस्पताल स्टाफ, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो पास के कमरों में आराम कर रहे थे, सभी कुछ ही पलों में अधिराज जी के सामने मौजूद थे। अधिराज जी ने उन्हें देखा और ब्रोकन वॉइस में कहा, हम चाहते हैं कि कोई ना कोई हमारे साथ रहे। हमें ऐसा लग रहा है मानो कोई हमारे पास था और उसने हमें मारने की कोशिश की हो। ये सुनकर डॉक्टर पूरी तरह से घबरा गए। आखिरकार ये अरमान सिंघानिया का घर था, वहां पर भला उनके रिश्तेदार पर जानलेवा हमला कैसे हो सकता था। कहीं ना कहीं सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। डॉक्टर ने फटाफट स्थिति को देखते हुए पूरी टीम को अलर्ट कर दिया था और साथ ही एक इमरजेंसी मैसेज भी डेविल ग्रुप में ड्रॉप कर दिया था। ध्रुव, आकाश, सुमित, आहान और अरमान सभी को एक साथ मैसेज मिला था। मैसेज देखकर अरमान ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया, लेकिन बाकी सभी तुरंत एक्टिव हो गए और देर न करते हुए पलक झपकते ही मिनी हॉस्पिटल में पहुंच गए। अब आकाश हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, क्या बात है डॉक्टर, आपने इमरजेंसी मैसेज क्यों ड्रॉप किया, यहाँ क्या हुआ था? तभी सबकी नज़र अधिराज जी पर गई। वो तुरंत उनके पास पहुंच गए और उन्हें संभालने लगे। ध्रुव आगे बढ़ा और उसने उनका अच्छे से चेकअप किया। वो काफी हद तक पैनिक कर रहे थे, उनका चेहरा पूरी तरह से लाल पड़ चुका था। तब ध्रुव बोला, क्या बात है दादाजी, आप ठीक तो है ना? क्योंकि अभी भी अधिराज जी पूरी तरह से होश में नहीं थे। तब डॉक्टर ने कहा, जब हम यहाँ आए तो ये काफी पैनिक कर रहे थे। शुरुआत में तो हमें लगा कि शायद इन्होंने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी ने इन्हें मारने की कोशिश की है। ये सुनकर सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। आकाश तुरंत बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये अरमान सिंघानिया का घर है और ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? किसने कहा आपसे ये सब? हाँ बोलिए, जवाब दीजिए। तब ध्रुव आगे बढ़ा और फकाफट कुछ इंजेक्शन एक बार फिर से अधिराज जी को दिए। उसके बाद उसने बाकी मेडिकल टीम को वहां से बाहर भेज दिया। अब वहां सिर्फ ध्रुव, आकाश, सुमित और आहान मौजूद थे। सुमित माथे पर बल डालकर बोला, कुछ तो बात है, आखिर अचानक से ये ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? देखो, इस घर में उन पर जानलेवा हमला हुआ है, ये बात पूरी तरह से पॉसिबल नहीं लगती, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर अचानक यहाँ हुआ क्या है? आकाश बोला। और डॉक्टर क्या कह रहे थे? ध्रुव ने जवाब दिया, शायद इन्हें इल्यूजन हुआ हो, भारी दवाइयों की वजह से ऐसा हो सकता है। फिलहाल अब ये बिल्कुल ठीक है और सुबह से पहले नहीं उठेंगे, इन्हें आराम करने दीजिए। फिर अचानक आहान ने पूछा, और यहाँ तो दादाजी रुके हुए थे, वो कहाँ चले गए? तभी आहान ने हैरानी से चारों तरफ देखा और बोला, एक मिनट, ये ग्रुप मैसेज तो डेविल ग्रुप पर गया था, मतलब सभी के पास गया होगा, तो अरमान भाई अभी तक क्यों नहीं आए? जैसे ही उन चारों ने अपने आसपास देखा और अरमान को वहां नहीं पाया, वो हैरान रह गए। तब आकाश बोला, हो सकता है वो आस्था के साथ हो, आखिर इंसान है, उनसे भी मिस्टेक हो सकती है। तभी सुमित गहरी आवाज में बोला, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरमान चाहे किसी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो या कहीं भी फंसे हो, लेकिन अगर इस तरह का इमरजेंसी मैसेज चाहता है तो वो हर हाल में आता है। तभी ध्रुव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मुझे लगता है तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वैसे भी रात काफी हो चुकी है, हम सब भी तो सो रहे थे, मैसेज आया, हमारी आंख खुली और हम लोग यहाँ आ गए, हो सकता है अरमान भाई सो रहे हों। लेकिन ठीक उसी वक्त आलोक जी वहां आ गए। उन चारों को वहां देखकर वो हैरान होकर बोले, अरे बच्चों, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और अरमान कहाँ गया? यहाँ तो अभी थोड़ी देर पहले अरमान था ना। जैसे ही आलोक जी ने ये कहा, चारों के चेहरे पर हैरानी छा गई। आहान तुरंत बोला, दादाजी आप क्या कहना चाहते हैं, अरमान भाई तो यहाँ नहीं थे, जब हम लोग आए तब यहाँ सिर्फ डॉक्टर लोग ही थे। आकाश ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए हम देखने के लिए आ गए, लगता है मिस्टर रघुवंशी को कोई बुरा सपना आया था। ये सुनकर आलोक जी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गए और फिर बोले, अच्छा, लेकिन मुझे तो अरमान ने ही आराम करने के लिए भेजा था, वरना मैं तो यहीं रुका हुआ था। फिर वो मुस्कुरा कर बोले, चलो खैर, हो सकता है वो वापस जाकर सो गया हो और मुझे बताना भूल गया हो। फिर उन्होंने कहा, बेटा अब तुम लोग भी जाओ और आराम करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है ना? दादाजी की बात सुनकर आकाश बोला, हाँ दादाजी अब सब ठीक है, अंकल भी आराम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से आपको उनके पास ही रहना चाहिए। ये बोलकर वो चारों वहां से बाहर तो निकल गए, लेकिन उनके मन में एक सवाल पूरी तरह से घर कर चुका था। अगर इमरजेंसी मैसेज जाने के बाद भी अरमान नहीं आया और दादाजी के मुताबिक वो पहले से यहाँ मौजूद था, तो फिर वो गया कहाँ? चारों के मन में यही सवाल लगातार खटक रहा था और उन्होंने फैसला कर लिया था कि अगली सुबह सबसे पहला सवाल वो अरमान से यही पूछेंगे। फिलहाल सभी अपने अपने कमरों में जाकर सोने के लिए चले गए थे। फिलहाल अगली सुबह 5 बजे के करीब अंश को तेज भूख लगी थी। उसकी रोने की आवाज सुनते ही आस्था की नींद खुल गई। वो फटाफट उठकर बैठ गई और तुरंत अंश को अपनी गोद में उठा लिया। उसे सीने से लगाते हुए वो प्यार से बोली, क्या हुआ मेरे छोटे से चैंप, भूख लगी है मेरे बेटे को? अंश अपनी मासूम आंखों से अपनी माँ को देख रहा था, मानो कह रहा हो, हाँ मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। आस्था ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसे सीने से लगाए
कमरे से बाहर निकलने लगी। वो अंश को कुछ खिलाने के लिए नीचे जाने ही वाली थी कि तभी अरमान की नींद खुल गई। अरमान तुरंत उठकर बैठ गया और आस्था का रास्ता रोकते हुए बोला, आस्था इस वक्त कहाँ जा रही हो? आस्था ने हैरानी से उसकी ओर देखा। अंश को भूख लगी है अरमान जी, मैं उसके लिए दूध लेने जा रही हूँ। ये सुनते ही अरमान जल्दी से आस्था के सामने आकर खड़ा हो गया। ये अंश सिंघानिया है, वो इस तरह रो रो कर परेशान क्यों हो रहा है? उसे थोड़ा मजबूत बनना चाहिए। अरमान की बात सुनकर आस्था पूरी तरह हैरान रह गई। आप कैसी बातें कर रहे हैं अरमान जी, वो अभी बहुत छोटा बच्चा है, उसे भूख लगी है इसलिए रो रहा है। असल में अरमान के मन में एक अलग ही डर था। वो नहीं चाहता था कि आस्था नीचे जाए और अचानक उसके दादाजी से सामना हो जाए। अगर दादाजी ने आस्था को सारी सच्चाई बता दी तो न जाने क्या हो जाएगा। अरमान किसी भी कीमत पर आस्था को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था। आस्था ने नाराज होकर कहा, आप मुझे अंश को कुछ खिलाने से कैसे रोक सकते हैं? आस्था की बातें सुनकर अरमान ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने आस्था की आंखों में देखते हुए कहा, आस्था मेरा वो मतलब नहीं था, मैं बस इतना कह रहा था कि हमारा बेटा हर तरह से मजबूत होना चाहिए, उसे हर मुश्किल का सामना करना सीखना होगा। ये सुनकर आस्था अविश्वास से उसे देखने लगी। अरमान जी प्लीज, ये मजाक करने का समय नहीं है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अंश अरमान सिंघानिया का बेटा है, जिसके पास कितनी दौलत है शायद खुद उसे भी नहीं पता। उसे भूख से लड़ने की नहीं, प्यार से जीने की जरूरत है। आस्था की बात सुनकर अरमान हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन तभी कमरे के बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनते ही अरमान तुरंत कमरे के दरवाजे की ओर देखने लगा। तभी वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, बाहर आकाश, सुमित, ध्रुव और आहान खड़े हुए थे। चारों को वहां देखकर अरमान थोड़ा सा चौंक गया। अगले ही पल वो बोला, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी बहुत सुबह का वक्त था और घर में लगभग हर कोई सो रहा था। वहीं आस्था तो अंश को दूध पिलाने के बाद दादाजी के पास जाकर बैठना चाहती थी।
उन चारों को देखकर आस्था जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, अरे आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी आहान आगे बढ़ा और अंश को गोद में लेते हुए बोला, भाभी हमें भैया से कुछ जरूरी काम है, तब तक आप चैंप को कुछ खिला पिला कर आ जाइए। ये सुनकर आस्था तुरंत बोली, हम तो कब से यही कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने हमारा हाथ पकड़कर रोक लिया था। फिर उसने शिकायत भरे अंदाज में कहा, पता है अरमान क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि अंश को खाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भूख बर्दाश्त करनी सीखनी चाहिए। आस्था ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, हमें तो लगता है कि ये हमें परेशान करने के लिए ही ऐसी बेकार की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, हमने इन्हें बता दिया है कि आज भले ही अंश छोटा हो लेकिन इसका बाप अरमान सिंघानिया है, हमें नहीं लगता कि इसे कभी भी भूख का एहसास होगा। ये सुनकर सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन अरमान गहरी और नाराज नजरों से उन चारों को देख रहा था। तभी ध्रुव बोला, भाभी आप जाइए और अंश को कुछ खिला दीजिए। ठीक है मैं जा रही हूँ। ये बोलकर आस्था अंश को लेकर वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसने चारों को एक गहरी नजर से देखा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे उनका इस तरह सुबह सुबह वहां आना थोड़ा अजीब लगा हो। आस्था के जाते ही अरमान ने उन चारों की ओर देखा और गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम लोग इस तरह यहाँ कैसे आ सकते हो? और सबसे बड़ी बात, इस वक्त आने का क्या मतलब है? वैसे भी एक घंटे बाद तो तुम लोग मुझसे स्टडी रूम में मिलने वाले थे ना? अरमान की बात सुनते ही सुमित आगे बढ़ा और बोला, अरमान देखो हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम सुबह सुबह यहाँ आए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही आए हैं। वहीं अरमान के दिल में अजीब सी बेचैनी थी। आस्था के कमरे से जाने के बाद से ही उसका मन बार बार मिनी हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। अगर आस्था वहां पहुंच गई और उसके दादाजी से मिल गई तो? यही सोचकर वो खुद भी आस्था के साथ जाना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उसे उसके दादाजी से मिलने नहीं देना चाहता था। लेकिन इन लोगों के इस तरह अचानक आ जाने से वो काफी इरिटेट हो चुका था। वो बोला, क्या कहना चाहते हो तुम लोग, सुमित साफ साफ बोलो। तभी आकाश आगे बढ़ा और अरमान को देखते हुए बोला, इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? कल तक तो सब कुछ ठीक था, हंसी खुशी का माहौल था, पूरा घर खुशियों से भरा हुआ था। एक बड़े तूफान के बाद आखिरकार सब कुछ शांत हुआ था। आकाश कुछ पल रुका और फिर बोला, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? क्या तुमने खुद को देखा है? तुम कितना अजीब बिहेव कर रहे हो? उसने अरमान की आंखों में देखते हुए कहा, एक बात बताओ, कहीं जाने से पहले उस राजवीर ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं था? क्या वाकई राजवीर ने जाने से पहले अरमान के साथ कुछ किया था, या फिर अरमान के इस तरह के बर्ताव का है कुछ और कारण? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों, सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर तेरे इश्क में।